तो ये लीला जो है भगवान की वृंदावन लीला, ये बहुत अद्भुत लीला है। और ये लीला समझना संभव साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, होता है। कोई आदमी बोलते हैं वृंदावन में जो कृष्ण का गोपियां का साथ जो लीला विलास हुआ था, ये was immoral, अनैतिक, भगवान के ये लीला नहीं होना चाहिए था। कोई कोई बोलते हैं नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये अनैतिक है, ये अशालीन है। लेकिन बात यह है कि भगवान तो मालिक है, और भगवान जो मालिक है वो अगर अपने संपदा को भोगना चाहते हैं उसमें कोई हर्जा होता है? और भगवान के साथ ये जो संपर्क है ये सबसे गहरा है, ये सबसे उन्नत उज्ज्वल रसम। पांचों रसों में से सर्वोत्तम रस है मधुर, और उज्ज्वल जो जो वैसे केवल प्यार के कारण जो संपर्क, और कोई सामाजिक रीति नीति का विचार जहां नहीं, ये है भगवान के साथ सबसे गहरा संपर्क। और इसमें कोई अनैतिकता नहीं है क्योंकि भगवान के साथ जो संपर्क है वो सबसे पवित्र संपर्क होता है। एक दृष्टांत ये दिया जाता है, पत्नी जब भगवान का भक्त बनता है तो पति क्या नाराज होते हैं? स्वाभाविक रूप में। परंतु पति प्रसन्न होते हैं, मेरे पत्नी भगवान की भक्त है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि इस भगवान के साथ जो संपर्क है उसमें कोई अनैतिकता या अशालीनता का संबंध नहीं रहता। लेकिन इसको इसको समझाने का एक जरूरत हुआ था। ये इस लीला का महिमा प्रचार करने के लिए भगवान भक्त रूप में आकर हमको समझाया कृष्ण कौन है और कैसे इस ब्रज लीला ही सर्वोत्तम है। तो ऐसी लीला विलास करने के लिए, मतलब भगवान को पहचानने के लिए, महाप्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण भक्त के रूप में श्री कृष्ण आए थे। तो इस्कॉन का जो विचार है ये चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दिए हैं उसी के आधार पर है। और इसका प्रमाण क्या है, किस शास्त्र के माध्यम ये भावना हमें मिल रहा है, इस सिद्धांत मिल रहा है? श्रीमद् भागवतम 18 पुराण है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ अमल पुराण है श्रीमद् भागवतम, मतलब जिसमें भौतिक जगत का कोई मल नहीं है। 18 पुराण में से 6 हैं तामसिक तमोगुण की द्वारा प्रभावित, 6 हैं रजोगुण की द्वारा प्रभावित, 5 है सत्वगुण के द्वारा प्रभावित, और 1 है सत्वगुण से भी परे जो शुद्ध विशुद्ध सत्य है, जो आध्यात्मिक जगत का जो विचार है वो शुद्ध सत्व अमल पुराण है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम में ही कृष्ण का सारे वर्णन हुआ है, कृष्ण कौन है। कृष्ण को अगर हम जानना चाहते हैं सही रूप से तो दो ग्रंथ की जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है भगवद गीता जो भगवान स्वयं बता रहे हैं, भगवान स्वयं बताए हम कौन है, वो कौन है, उनके साथ हमारा संपर्क कैसी है और कैसे हम उस संपर्क जोड़ सकते हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान स्वयं अपने बारे में बोल रहे हैं। जब कोई महान व्यक्ति अपने बारे में बोलते हैं तो कितना बोल सकते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द आता है, ब्लोइंग वन्स ओन ट्रम्पेट। सो कृष्ण शर्मा रहे हैं, बता नहीं सकते पूरा रूप से। लेकिन भगवान के भक्त जब भगवान के बारे में बोलते हैं तब उसका कोई सीमा नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत है भक्तों के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन। तो ये श्रीमद् भागवत के माध्यम ही हम भगवान को, श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से पहचान सकते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। वो 12 स्कंद श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। पहला 2 का स्कंद है भगवान के चरण कमल, और थर्ड एंड फोर्थ, तीसरी और चौथी स्कंद है भगवान के थाइज जानू। पंचम स्कंद है भगवान के उदर पेट। षष्ठ स्कंद है भगवान की छाती। सप्तम और अष्टम स्कंद है भगवान के बाहु। नवम स्कंद है भगवान के कंठ। दशम स्कंद है भगवान के हाश्रज्जल मुखमंडल, मुख कमल। 11, 11 स्कंद भगवान के कपाल, और 12 स्कंद भगवान के शीर। तो आदमी को हम कैसे पहचानते हैं? उनके मुंह से। ऐसे ही दशम स्कंद के माध्यम भगवान को हम सही रूप से देखते हैं, पहचानते हैं। तो ये इसलिए श्रीमद् भागवतम का इतना महत्व है, और इस भागवतम के द्वारा ही हम भगवान को पहचानते हैं, और इस भागवतम के माध्यम ही भगवान को सही रूप से सेवा की वर्णन मिलता है, कैसे भक्तों के साथ भगवान का संपर्क। और ये दशम स्कंद में ही भगवान का स्वरूप का विचार हुआ है। भगवान से जन्म से लेकर वृंदावन लीला, द्वारका लीला संपादन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत का जो तात्पर्य है, असल संदेश है, सही विश्लेषण जो है चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। और चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी किए थे कि पृथ्वी में जितने सारे गांव हैं, शहर हैं, हर जगह भगवान के ये महिमा का प्रचार होगा। ये वर्णन आज से, ये भविष्यवाणी आज से लगभग 500 साल पहले हुआ था, और ऐसी भविष्यवाणी असंभव था। 500 साल पहले मनुष्य को पता नहीं था इस दुनिया में कितने महादेश हैं, इस पृथ्वी में। एशिया के बारे में जानते थे और यूरोप थोड़ा बहुत जानकारी था, लेकिन सारा पृथ्वी भर इस शिक्षा, इस महाप्रभु के इस वाणी का प्रचार होगा, कैसे संभव था। और इस भविष्यवाणी पर पूर्ण विश्वास रखकर श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका गए थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था उसको सफल करने के लिए, और सफल करने के लिए सफल किए थे, सफलता का सूत्रपात किए थे। और यद्यपि श्रील प्रभुपाद केवल 10 साल के लिए उस पश्चात केवल 10-12 साल तक इस पृथ्वी पर रहे। सन 66 में प्रभुपाद, सन 65 में प्रभुपाद अमेरिका गए थे और सन 1977 में प्रभुपाद इस भौतिक जगत से अप्रकट हुए थे। लेकिन प्रभुपाद ऐसी एक आयोजन कर चुके थे इस्कॉन के माध्यम, ये संस्थान के माध्यम, ताकि उनके देहांत के पश्चात भी, उनको चले जाने भी से भी ये कार्य होते रहता है और वही हो रहा है। आज सारा दुनिया भर कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। श्रील प्रभुपाद, मैं बताया था 10 साल के अंदर 108 मंदिर को स्थापना किए थे, लेकिन आज इस्कॉन में दुनिया भर 600 से भी अधिक मंदिर बन चुका है और बढ़ ही रहा है। हर साल हम देखते हैं मंदिर बढ़ ही रहा है, भक्तगण बढ़ ही रहा है। जहां कृष्ण भक्ति का प्रचार संभव नहीं था उस समय, जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में धर्म को मानते नहीं है और धर्म का प्रचार तो असंभव था। रशिया में प्रभुपाद केवल 3 दिन के लिए गए थे, कोई कोई जगह प्रभुपाद गए भी नहीं। लेकिन आज उस जगह में कृष्ण भक्ति का बहुत ही प्रचार हो रहा है। रशिया में लगभग, मैं बोलता हूं लगभग क्योंकि एकदम करेक्ट नहीं है, 70 से भी अधिक मंदिर है केवल रशिया में, जहां कोई जा भी नहीं सकता था। और कोई अगर प्रचार शुरू हुआ था, प्रभुपाद 3 दिन के लिए गए थे और 3 दिन के बीच एक रशियन को दीक्षा दिए थे और वो रशियन नौजवान ये महाप्रभु की वाणी, इस्कॉन की वाणी प्रचार करने के लिए पूर्ण रूप से युक्त हो गए थे और उन्हीं के प्रभाव से, और इस्कॉन से भी मदद दे रहे थे प्रभुपाद, उनके प्रभावों से रशिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार होने लगा। रशियन भाषा में अनुवाद हुआ, बल्कि किताबें नहीं ले सकते थे रशिया में। तो भगवद गीता का 18 अध्याय है, तो किताब नहीं था, तो 18 अध्याय को 18 भाग में लेकर 18 आदमी एक साथ पढ़ते थे, ताकि एक किताब को 18 आदमी एक साथ पढ़ सकते हैं। किसी के पास एक पहला अध्याय, वो जब पढ़ लिया उसके बाद दूसरा अध्याय आया ऐसे, और कोई नए आदमी के पास पहला अध्याय गया, दूसरा अध्याय खत्म होने के पश्चात तीसरी अध्याय आ गया, ऐसे कृष्ण भक्ति का प्रचार होने लगा रशिया में। और इसका इस्कॉन की प्रभाव ऐसा बढ़ गया था कि उस समय सन 84 में वहां के राष्ट्र प्रधान थे ब्रेजनेव ने बताया कि रशियन कम्युनिज्म का 3 शत्रु है। एक है अमेरिका के पॉप म्यूजिक गाना, दूसरी है अमेरिका का भौतिकवाद और तीसरी है इस्कॉन। क्योंकि इतने सारे नौजवान लड़का लड़की इस्कॉन के साथ युक्त हो रहा था कि रशियन सरकार सोच में पड़ गई ये क्या करेंगे, और उसको बहुत सारे निर्यातन किए थे। कोई भक्तों का कारागार में मृत्यु हो गया था, वो भेज देते थे साइबेरिया में लेबर कैंप में। इतना अत्याचार होते हुए भी उन्होंने इसको त्याग नहीं दिया। और अंत में क्या हुआ, भगवान की भक्तों के प्रति जब निर्यातन होता है तो भगवान क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्यकशिपु ने अत्याचार कर रहा था, तो अंत में क्या हुआ, भगवान खुद आकर नृसिंहदेव के रूप में आकर हिरण्यकशिपु को खत्म कर दिया। तो वैसे ही रशिया में भक्तों के ऊपर अत्याचार करने के कारण कम्युनिज्म को भगवान खत्म कर दिया। इस तरह भगवान की कृपा से दुनिया भर भक्ति का प्रचार हो रहा है, भगवान की महिमा का प्रचार हो रहा है। ये है हमारी इस्कॉन। मैं पूछा था इस्कॉन के बारे में कौन जानते हैं, तो यही हम कर रहे हैं, यही हमारा विचार है, ये हमारा उद्देश्य है, भगवान की वाणी का प्रचार। बिना और कोई उद्देश्य हमारा नहीं है, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सारा दुनिया भर भगवान भक्ति का प्रचार हो और सारा दुनिया भर मनुष्य ने भगवत भक्ति को अपनाए। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति को अपनाने से जीवन सफल होता है। जीवन अपना सफल बना ले, भज रे हरि का नाम रे। Hare Krishna. I'm very happy to have come here and met all of you. जैसे जानवी के बता रहे थे कि वैसे हमको बताया कि आप रिट्रीट देते हैं predominantly male भक्तों को लेकर, बल्कि महिलाओं के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। तो मैं बोला, कौन बोला है?
जैसा जानवी प्रिया ने शुरू में बताया आप सबको कि गुरु महाराज बहुत ही प्रैक्टिकली हम सबको बताते हैं कि कृष्ण भक्ति करते हुए हम अपना जीवन बहुत आराम से कैसे जीते हुए, जैसे भगवद गीता के सिद्धांत कृष्णा हमें बताते हैं और हम आप लोगों को बताते हैं तो थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन गुरु महाराज उसको इतना इजी कर देते हैं हमारी लाइफ में उतारने के लिए। तो आप सबके पास कुछ भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप जरूर बेझिझक पूछिए, बहुत अच्छा अवसर है। निसंकोच होके पूछिए, और ये बहुत अच्छा अवसर है, हमें ऐसा अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है, और एक बार खो जाएगा तो हमारे लिए बहुत डिले हो सकता है, इसलिए डोंट टेक रिस्क एंड आस्क व्हाट एवर यू वांट टू आस्क।
लगता है सब संकोच में पड़ गए।
भक्ति में कैसे आगे बढ़े है, लेकिन एकदम और ज्यादा।
वेरी गुड। भक्ति का शुरुआत होता है शरणागति या प्रपत्ति, मतलब भगवान के पास अपने आप को समर्पण करने से। ये इससे इसके द्वारा ही शुरुआत होता है, और आगे कैसे बढ़े, जितना ही हम भगवान की शरण लेते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे शरण लेते हैं थोड़ा सा सर झुका कर, और शरण लेते हैं सर झुक जाता है, और झुकते 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 जब एकदम जमीन में गिर जाते हैं बस। तो मतलब आगे बढ़ने का तरीका केवल यही है, भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देना। यस। ये दो दिन का ट्रेनिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे बेहतर है अगर हम दिन भर ही कर सकते हैं, बल्कि वो तो संभव नहीं होता है। मन में करे, मन में जब करते हैं तो क्या होता है, दो चार बार कृष्ण के नाम लेने के पश्चात और किसी के नाम आ जाता है मन में, कृष्ण चले जाते हैं और कोई आ जाता है। तो इसलिए पहले जो है ये अभ्यास की जरूरत होता है, और अभ्यास जो है वो नियमित रूप से करना चाहिए। इसलिए संख्या पूर्वक नामगान नति भी, संख्या पूर्वक भगवान के नाम लेना चाहिए। जो बोलते हैं क्यों 16 माला करेंगे हम, दिन भर करेंगे, हम बोलते हैं कम से कम 16 माला से तो शुरू करो। अगर हाँ, अगर दिन भर 24 घंटा कर सकते हो, मन में कर सकते हो, तब तो बहुत ही अच्छा है, बल्कि कर नहीं पाओगे।
आप सबकी तरफ से मैं पूछती हूँ कि हम सबको समझ नहीं आता ना कि जैसे अगर आज हमको सत्संग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हमको समझ नहीं आता, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और बच्चे को लेके कहीं ट्यूशन छोड़ने जाना है, बहुत सारे ऐसे लेडीज को काम आते हैं ना, तो हमको समझ नहीं आता उस वक्त पे हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सबका क्वेश्चन है कि नहीं, हाथ उठाओ किस किस का। ठीक है, थैंक यू।
ठीक है, बाजार जाना है, बच्चे को स्कूल लेके जाना है, कोई बात नहीं, बल्कि हाथ में माला लेके जाना और चपते रहना। काम तो रहेगा जरूर, हम काम छोड़ नहीं सकते कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं काम किए बिना कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी पल भर के लिए भी नहीं रह सकते, तो कार्य करना ही होगा, काम करना ही होगा। लेकिन काम करते हुए भी हमको भगवान को याद करना होगा, भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना होगा और भगवान की महिमा कीर्तन करना होगा। कोई ये तो मुश्किल नहीं है, हम काम करते हो तो कितने कुछ करते हैं, है ना? और बाद में तो मैं ये बोलूंगा ठीक है बच्चे को स्कूल लेने हैं, ये सारे काम हैं, बल्कि मूवीज में तो जरूर जाते हैं तो समय निकल लेते हैं ना, बच्चे को स्कूल लेना है, खाना तो पकाते हैं, खाना तो खाते हैं, और रात को तो सोते हैं, ये सारे समय तो मिल जाता है। तो भगवान जो हमको 24 घंटा दिन में दिया है उनके लिए दे, एक दो घंटा दे दो, इसमें हर्जा क्या है, निकाल लो ऐसे विचार करके। ये करते हुए भी हम कैसे ये समय हम निकाल सकते हैं। असल बात ये है कि इसके लिए संकल्प का जरूरत होता है, विचार करना है कैसे हम करूंगा, करना है कैसे करूंगा, जरूर निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, और याद दिला दिया वो मैं बोला भी 24 घंटा भगवान की है, और असल बात यह है कि समय भगवान है, भगवान का ही रूप है समय। सृष्टि इस भौतिक जगत का सृष्टि कार्य में भगवान का पहला कदम था समय के रूप में प्रकाश, और ये समय जो है ये भगवान का दृष्टिपात है। भौतिक जगत के प्रति, माया के प्रति भगवान जब ईक्षण करते हैं, मतलब दृष्टिपात करते हैं, तो माया क्षोभित होती है और तब माया व्यक्त होता है, प्रकट होता है, प्रकाशमान होते हैं, और आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। सब कुछ समय के आधार पर है ना, सब कुछ जो हो रहा है समय के आधार पर है। ये मैं जो आया आपके साथ मिले हैं समय के आधार पर, मैं तो बताया गया था चार बजे आना है, और उसके बाद हम जब 4 बजे आने के लिए तैयार किए, बोला 4:30 बजे निकलना है तो ऐसे समय के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है। तो ये समय है, काल है, भगवान का ही रूप, और ये काल बह रही है एक नदी जैसे बहती है। तो नदी में जब हम तैरते हैं, किस तरह तैरना सरल होता है, सहज होता है, जिस तरह लहरी बहती है उस तरह हम चलते हैं। तो भगवान की ओर जब जाते हैं हम, तो ये लहरी की ओर ही चलना है, स्रोत की ओर चलना है। और जो हमारे अपने लिए जब हम समय की इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये स्रोत की विपरीत दिशा में जाना। तो स्रोत अब तैरते हैं ना, नदी में कौन कौन तैरे हैं? कोई नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा तो नदी के प्रतिकूल में जाना बहुत कठिन है। हम देखते हैं जब तक तैरते हैं गंगा में, जब वहां जश गंगा की शोध बहुत तेज है मायापुर में, जो जब हम विपरीत दिशा में प्रतिकूल में जब तैरते हैं बल्कि एकदम बढ़ते नहीं है। लेकिन जब हम उस तरफ चलते हैं, बस तैरने का भी जरूरत होता नहीं। तो ऐसे ही समय के इस्तेमाल इस रूप से करना चाहिए। भगवान जिस दिशा में है, जिस दिशा हमको भगवान के पास ले जाएंगे, उस दिशा में अगर हम समय की इस्तेमाल करते हैं, तो समय बहुत ही सुंदर रूप से हम उस समय के अनुकूल गति में चल सकते हैं। नहीं तो प्रतिकूल दिशा में चलना बहुत ही मुश्किल है। हरे कृष्ण।
जब हम लोगों से कहते हैं माला करना, तो धीरे धीरे हम चार नियम बनाते हैं। तो जैसे वैष्णव में हम कहते हैं कि चाय कॉफी, तो ये मतलब वो लोग इस तरह कहते हैं कि आप इसको हमारे चाय के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, चाय और कॉफी में क्या बुरा है? मतलब वो उनको वैष्णव में वो नहीं लेते, तो इनको
हम बोलते हैं क्योंकि वृंदावन में चाय कॉफी नहीं मिलेगा। तो इसका प्रस्तुति यहाँ से ही करना होगा। अगर वहाँ जाना है और पूरा जवाब मैं नहीं दिया इस प्रश्न का, चाय कॉफी भी नशा है। अब छोड़ क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि नशा बन गया है, जो नशा है उसको ठीक है। हाँ बताइए। एक ये है ना माइक्रोफोन।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हम भक्ति में आए हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस फील किए और हमें हमारी गलतियों का एहसास होता है, हमारे अंदर जो कमियां हैं वो पहले हमें दिखने लगती है, तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। पर एक चीज बहुत ज्यादा है मेरे अंदर, जैसे क्रोध, तो उस पर कंट्रोल नहीं पा रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? और दो हम जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनसे कंसल्ट भी करते हैं, वो हमें बताते भी हैं कि इस तरह से, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो क्या करें इसके लिए?
मैडम ये हमारे छह शत्रुओं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। शत्रु जब होता है उसको हराना कठिन होता है। तो ऐसे सोच लो कि क्रोध एक शत्रु है, तो इसको हराना होगा, तो लड़ाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, कोशिश करना होगा। क्रोध जो है वो रजगुण के प्रभाव से होता है। क्रोध जो होता है काम से क्रोध होता है। काम का मतलब है भौतिक जगत को भोग करना। जब हम भोग करने में असमर्थ होते हैं या जब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तब हम क्रोधित होते हैं, क्रोध का उदय होता है। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि रजोगुण और तमोगुण की जो प्रभाव, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयाश्च जी, रजो और तमोगुण के प्रभाव से काम लोभ इत्यादि, इत्यादि का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, काम क्रोध काम लोभ दयाश्च जी आदि, चेत एत अनाबिद्धम, इसके प्रभाव से हम तभी मुक्त हो सकते हैं, स्थितं सत्ते प्रसीदति, जब हम सत्गुण में स्थापित होते हैं। स्थितं सत्ते प्रसीदति, इसका मतलब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर सत्गुण में, और सत्गुण में हम कैसे अधिष्ठित हो सकते हैं, भगवत भक्ति के द्वारा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो केवल राजो तमो ही नहीं, सत्वगुण से भी परे जो शुद्ध सत्व है उसमें हम अधिष्ठित होते हैं। तो ये है स्वाभाविक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम क्रोध संवरण करते हैं। भगवत भक्ति का मतलब होता है जो कुछ हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं। ठीक है, क्रोध है तो क्रोध भगवान की भक्ति में नियोग करना होगा। ठीक है, और किसी के लिए नहीं, भगवान भगवत भक्ति के लिए क्रोध का प्रयोग होगा। जैसे हनुमान, जैसे अर्जुन लड़ाई कर रहे हैं, क्रोधित अगर नहीं हुआ तो लड़ाई नहीं कर पाते थे। लेकिन ये जो क्रोध है वो भक्ति में भगवान की सेवा में अर्पित हो रहा है, इसके द्वारा क्रोध की कंट्रोल हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। अच्छा, और एक बात मैं बोलता हूँ, अगर आप क्रोध को पराभूत करना चाहते, क्रोध को कंट्रोल करना नियंत्रण करना चाहते हैं, तो जो कुछ क्रोधित होकर जो कुछ बोलते हैं वो मुस्कुराते हुए बोले। ओके, शी हैज शी द सिंस द माइक इज देयर लेट हर आस्क द क्वेश्चन, टेक द माइक।
हरे कृष्ण गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। महाराज आपने माता जी को बताया कि चाय और कॉफी एक तरह का नशा है। जब भी मैं अपने किसी फ्रेंड को बोलती हूँ चाय या कॉफी एक नशा है, वो बोलते हैं मेरे लिए वो नशा नहीं है, मैं कल चाहूँ मैं कल छोड़ सकता हूँ।
तो छोड़ दो। छोड़ते क्यों नहीं?
महाराज इज दैट सीरियसली वो नशा?
देखो, ये जो नशा करते है ना वो सब ऐसे ही बोलते है। मैं देखा एक व्यक्ति, वो वैसे नशा करता था केवल चाय कॉफी का नहीं, हीरोइन का, मतलब वो बहुत वो अफीम से ओपीएम से बनता है, बहुत ही खतरनाक है ये पुस एडिक्शन, हीरोइन एडिक्शन। वो बोलता था, मैं बोलता था ये डोंट टेक दैट, इट विल डिस्ट्रॉय यू, क्योंकि वो बोलता था नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। बल्कि वो हिरण का दास बन गए हैं। तो वैसे जो नशा करते हैं वो सोचते हैं नहीं मैं छोड़ दूंगा कोई बात नहीं, बल्कि छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखो चाय कॉफी भी छोड़ना मुश्किल होता है, तंबाकू छोड़ना मुश्किल होता है, बल्कि जब कोई इस्कॉन में आता है बस सब कुछ छोड़ना आसान हो जाता है।
महाराज मेरे घर पे ऐसा हुआ था कि मम्मी ने जब चाय छोड़ी तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, तो और पापा ने जब छोड़ा तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर ऐसा क्यों हुआ?
माता जी, माता का प्रभाव पिता पर आ गया था।
थैंक यू सो मच गुरु महाराज।
हरे कृष्ण। ओके वृंदा हैज हर हैंड्स अप, देन आई विल टेक टेक द माइक।
हरे कृष्णा गुरु महाराज, थैंक यू फॉर द वंडरफुल टॉक। गुरु महाराज, जब भी बाहर जाते हो और नॉनवेज का डिस्कशन होता है तो वो लोग बोलते हैं ऐसे तो तुम लोग जो वीट और राइस ये सब खाते हो वो लोग भी ग्रो होते हैं और मतलब वो लोग भी लिविंग होते हैं, तो तुम लोग भी उन्हें काटते हो पहले, उसके बाद ही वो जो भी उनका आगे प्रोसेस होता है और फिर तुम खाते हो। तो वो लोग बोलते हैं कि वो कैसे नॉनवेज नहीं है, तो उस चीज को उनके आंसर करें।
नॉनवेज है बल्कि हिंसा उसमें भी हो रहा है, उसका सवाल बोल रहे हैं। देखो जैसे तुम बोला चावल गेहूं वगैरह, अनाज, अनाज संग्रह तब होता है जब पौधे मर जाता है, तब उसको काट के अनाज का ये है, जब उसका फल मतलब जो ये जब पक जाता है तो पौधे जिसमें वो उसका उपज हुआ वो मर जाता है। तो हिंसा नहीं हो, तब उसको संग्रह हुआ है। फल जब खाते हैं, गाछ को तोड़ना नहीं होता है, पेड़ को नहीं तोड़ना होता है, वैसे पेड़ खुद ही ऐसे फल दे रहे हैं, है ना। और तुम बोलते हो ठीक है वो कैबेज कॉलीफ्लावर उसको काटना हो रहा है, ठीक है, तब ये चेतना का विचार आता है। एक कैबेज का चेतना, वो भी उसमें भी जीवन है, उसको वो भी मरता है, लेकिन उसका जो चेतना है, और एक सोचो एक पशु का जो चेतना है, एक तरह नहीं है, एक किस्म का नहीं है। तो चेतना जितना उन्नत होता है मृत्यु के समय उतना ही कष्ट होता है। जैसे हत्या हो रहा है, अचानक उसको मार डाला, तो कष्ट जो होता है, उसका कष्ट जो है उसका शरीर में स्प्रेड करता है, और जो सेल कोश कोश में उसका प्रभाव होता है, मतलब ये होता है प्रसार होता है। तो जब कोई उसको उस सेल को उस मांस को खाता है तो उस कष्ट को भी उसके साथ साथ खाते हैं। तो अब बोलो एक कैबेज का कष्ट और एक बकरी का कष्ट एक तरह है, इसलिए हम वो नहीं खाते। तो अगर सब कुछ खाना ठीक है तो मनुष्य नहीं क्यों खाते हो? हम वैसे जो मांस खाता है, किसके मांस खाता है? जिस जीव में, जिस पशु में चेतना उतना उत्तम नहीं है, उन्नत नहीं है, एडवांस नहीं है। और दूसरी बात है, भगवान एक जीव को, अन्य जीव को आहार करके जीवन धारण करना पड़ता है। जीवश्च जीव जीवनम्, एक जीव अन्य जीव को खाकर जीवन धारण करते हैं। तो मनुष्य के लिए अनाज सब्जी फल वगैरह मतलब वेजिटेरियन फूड है मनुष्य के आहार के लिए। पशु में भी देखो, कुछ पशु है जो घास वगैरह पत्ते खाते हैं और कुछ पशु मांस खाते हैं, उसका वृत्ति वैसा है। जैसे बकरी मेष वगैरह गाय ये सब घास खाते हैं, लेकिन शेर मांस खाते हैं, प्रकृति के नियम से ही। तो वैसे प्रकृति के नियम से मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए था। मनुष्य का जो ये है वो शाकाहारी, जो पशु में देखते हैं, जो शाकाहारी पशु का दांत का गठन एक तरह होता है और जो मांस खाने वाला पशु है उसका दांत की गठन और एक तरीका का होता है ना। जैसे जो घास वगैरह खाते हैं उसको डेंटल स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है और जो मांस खाता है उसको कैनाइन टीथ रहता है। तो अब बताओ मनुष्य का दांतों का गठन शाकाहारी पशु की तरह है या मांसाहारी पशु की तरह? शाकाहारी मांसाहारी पशु की तरह कोई कोई व्यक्ति का ये होता है जैसे ड्रैकुला। तो ऐसे हम देखते हैं कि मनुष्य का आहार, मनुष्य का नेचर स्वत ही शाकाहारी है। और सुनना चाहते हो? जो मांसाहारी पशु जो है उसका जो इंटेस्टिन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत छोटा होता है। और जो शाकाहारी है, वेजिटेरियन मतलब हर्बीवोरस, उसका बहुत लंबा होता है। क्यों? क्योंकि जो साग पत्ते को, घास पत्ते को बॉडी सेल में ट्रांसफर करने में काफी समय लगता है, इसलिए उसका इंटेस्टिन बहुत लंबा होता है। और जो मांसाहारी पशु है वो जो पशु का मांस खाता है तो उसको सेल तो बन चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए उसको ज्यादा समय नहीं लगता है उसको अपनाने में। और एक बात है, जो वेजिटेबल्स जो क्या बोलते हैं, व्हेन इट रॉट्स,
सड़ जाते हैं।
और मांस जब सड़ता है, तो मांस जब सड़ता है तो कैसा लगता है, कैसा ये होता है? बहुत सारे बदबू आता है, बदबू होता है। लेकिन एक गोभी जब अगर सड़ता है तो पता भी नहीं चलता है। तो पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक तरीके का पचन है, मतलब सड़ना है। तो आप सोचो पेट में मांस सड़ रहा है और गोभी सड़ रहा है, तो पेट का हाल कैसे होता है? और इसलिए जो मांसाहारी है उसका इंटेस्टिन छोटा होता है, और ये जो है शाकाहारी जो है उसका इंटेस्टिन बहुत लंबा होता है। और सारे पशुओं में, सारे प्राणियों में से मनुष्य का इंटेस्टिन सबसे लंबा है अपने शरीर के अनुपात। मनुष्य के इंटेस्टिन अपना शरीर से 6 गुना है लंबा। तो अब बताओ मनुष्य क्या शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए?
गुरुमंच कुछ लोग मतलब मांसाहार इसलिए भी होते क्योंकि प्रोटीन मिलता है उनको, न्यूट्रिशन, आयरन।
वो पहले का विचार है, वो विचार छोड़ दिया। अमेरिका यूरोप में बहुत सारे आदमी आज शाकाहारी बन रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि मांसाहार शरीर के लिए ठीक है। और ये अगर प्रोटीन का सवाल है तो मांस से भी अधिक प्रोटीन सोया प्रोडक्ट में होता है, तो ये सारे बकवास है।
शरणागति
या माइक। अच्छा बताओ, हम तुमको मैं सुन रहा हूँ, सुनाई दे।
जैसे शिवानी ने बोला तो बहुत से लोग ऐसे भी बोलते कि आप दवाई भी तो लेते हो, दवाई में मछली का तेल मतलब वो सब
दवाई में मछली क्या, जहर भी हम पी सकते हैं। लेकिन वो प्रेस्क्रिप्शन के रूप में आना चाहिए।
वो भी छोड़
दो ऐसे। ठीक है, दवाई जब जरूरत होता है शरीर के लिए तब ले सकते हैं, लेकिन कितने दवाई में ये होता है, क्या होता है, मांस होता है दवाई में? दवाई में क्या मिलता है? कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, अगर शाकाहारी हो तो कॉड लिवर ऑयल नहीं लेना है। कॉड लिवर ऑयल लेना ही पड़ेगा। कॉड लिवर ऑयल के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, वो ले सकते हो। जो शाकाहारी है वो कि सब हर व्यक्ति के कॉड लिवर ऑयल पीते हैं, तो जो ऐसे ऐसे आर्गुमेंट करना चाहते हैं तो उसको बोलो ठीक है। या ऐसे सम इसका मतलब ये है कि विराट स्वरूप है, और जो विराट स्वरूप का समझना इतना कठिन है कि उसको सरल रूप से समझने के लिए ऐसी रूप का चिंतन होता है। हाँ, जैसे कि वो पर्वत जो है वो है भगवान की हड्डी, वो विराट रूप की हड्डी। सूरज है और चंद्रमा है उसकी आंखें। तो ये सब भगवान के ही प्रकाश हैं, लेकिन उसको सही रूप सरल रूप से सहज समझने के लिए ऐसे वर्णन हो। विराट रूप में भगवान जो कुछ कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं ये समझने के लिए इस रूप की कल्पना। निष्क्रिय भक्ति मतलब जिस भक्ति में भगवान का चिंतन हो रहा है लेकिन सेवा नहीं हो रहा। और सक्रिय भक्ति मतलब जिस भक्ति भगवान की सेवा के द्वारा जिस भक्ति की अनुशीलन हो रहा है, संपादन हो रहा है।
तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उसको भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक पड़ती है, मतलब निष्क्रिय भक्ति की
आसक्ति। फिर से पढ़ो।
निष्क्रिय भक्ति की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है, और सक्रिय भक्ति की आसक्ति राग अवस्था तक बढ़ती
है। ये समझा ना, ये निष्क्रिय भक्ति जो है ये प्रेम तक पहुंचती है। सेवा के बिना जो भक्ति वो प्रेम तक पहुंचती है, और जब प्रेम जब होता है तब प्रेम के नाते सेवा शुरू होता है, तो सक्रिय भक्ति। मतलब जब तक प्रेम न होता है तब तक निष्क्रिय हो सकता है, जब प्रेम में पहुंच जाते हैं बस तब निष्क्रिय नहीं रह सकते। बच्चे को जब प्यार करते हो क्या बैठे बैठ के रहते हो, क्या करते हो? सेवा शुरू होता है, तो प्रेम के कारण सेवा शुरू होता है। और प्रेम के जो सेवा है, प्रेम पूर्वक जो सेवा है जिसको सक्रिय भक्ति कहा गया है, इस सक्रिय भक्ति राग मतलब शुद्ध प्रेम का उसका परिणति है, विशुद्ध प्रेम, जिस प्रेम में भगवान को प्यार करे किए बिना और कुछ करने को मन नहीं चाहता है। ठीक है, ओके।
प्रचार करने जाते हैं हमारा, सब लोगों को अच्छा बहुत लगता है, लेकिन लोगों को ऐसा होता है कि हम जो इतने सालों से करते आए हैं वो कैसे छोड़ दें, मतलब उसमें से निकलना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है।
जो काम सही नहीं है, चाहे हम कितने दिन तक उसको कर रहे हैं, अगर मैं बुद्धिमान है, जब हमको पता चलता है ये काम सही नहीं है, तो क्या उसको करते रहना, न कि उसके छोड़ के जो सही काम है वो कर शुरू करना चाहिए।
ये चीज हम कैसे मतलब
उनको अनुरोध करो, थोड़ा खुद समझने की कोशिश कीजिए। जो कर आप अगर ये समझ लिए हैं कि ये ही सही काम है, जो आप कर रहे थे वो गलत है, मतलब सही नहीं है, तो उसका करने का क्या जरूरत है। जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है, मैं 32 साल से शराब पी रहा हूं, मुझे पता है कि शराब पीना ठीक नहीं है, बल्कि क्या करूं, 32 साल से जो मैं कर रहा था वो छोड़ू कैसे। लेकिन जो बुद्धिमान है, विचारवान है, वो समझेगा ये करना ठीक नहीं है। तो चाहे आप 32 साल तक किए या 32 जीवन तक किए, जब पता चला है ये सही नहीं है, तो इसको छोड़ना ही बुद्धिमान का कार्य है। ठीक है, ये कैसे समझाओगे ये बात नहीं, कैसे वो समझेगा बात यही है।
हम आगे भक्ति बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में आगे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यही फिर वो इतना ही ठीक है इससे आगे बढ़ने के लिए।
कल भी ऐसा प्रश्न एक आया था, इसका जवाब मैं ऐसे दिया था, ब्रज गोपिया का स्थिति कैसी थी, ब्रज गोपिया का घर वाले क्या चाहते थे कि वो कृष्ण के साथ चले, राधा रानी के ससुराल चाहता कि राधा रानी, लेकिन राधा रानी क्या किया, कृष्ण के प्रति उनका प्यार इतना गहरा था कि छोड़ नहीं सकते, और क्या करते थे, घर के काम सही रूप से करते थे सब गोपिया, ताकि कोई इल्जाम ना दे सके, बल्कि जब कृष्ण जब बसरी बजाते थे, बस सब कुछ छोड़ के भागते थे, दौड़ते थे। तो ऐसे ही ठीक है, मान ने ये वो पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तो कृष्ण को कृष्ण भक्ति किए बिना नहीं रह सकता, ऐसी भावना है मुझे, और घर के काम जो है वो करते रहिए, बल्कि भक्ति भी करते रहिए। आई विल टेक दिस टू क्वेश्चंस एंड आई विल एंड नाउ बिकॉज आई हैव टू गो। अच्छा, एक मिनट। We are trying to make our children Krishna conscious, but difficult to cope up because of technological advancement, as they are using phones, laptops, and friends. In their growing age, we can't face them and stop them how to behave. अगर तो रोक नहीं सकते हैं, इफ यू कांट स्टॉप देम, देन जस्ट कीप प्रेइंग टू कृष्णा, क्योंकि ये ऐसे कभी कभी होता है कि वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, सो जस्ट व्हेन देयर इज नो अदर वे, जस्ट प्रे टू कृष्णा ऑन देयर बिहाफ। नहीं तो ज्यादा डांटने से क्या होगा, जब तक बच्चा है तब तक मान लेंगे, जब बड़ा हो जाएगा तो रिवोल्ट करेंगे। गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, एवरीथिंग इज clone or arranged by, everything is done or arranged by Krishna. But when situation come against our here from my desire, I can't handle this. On that time, this is done by Krishna. I can't handle this on that time. This is done by Krishna. Whose question is that?
मैं समझा नहीं, थोड़ा बता सकते हो क्या बोलना चाहते हैं?
प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी सिचुएशन हमारे डिजायर के अगेंस्ट आती है, जब सब कुछ कृष्ण से होता है पता है, और जब आता है तो उस टाइम पे
सब कुछ कृष्ण से नहीं होता है, नहीं सब कुछ अपना किया हुआ है. जो कुछ होता है सब हमारे कर्म के अनुसार ही होता है. जैसे हम कर्म किया उसके अनुसार हमको फल मिलता है. कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं, भौतिक जगत कृष्ण सेवन केवल देख रहे हैं. और देख क्यों देख रहे हैं? ताकि कब हम उनकी ओर मुंह फेरें, कब हम उनके प्रति अनुरक्त हो, इसके प्रतीक्षा कर रहे हैं. तो जब कुछ, लेकिन लोग क्या करते हैं, जब कुछ when something is very nice, जब कुछ बहुत अच्छा होता है तो बोलते हैं कि ये मेरे लिए हुआ, मेरे कारण हुआ. और जब कुछ खराब होता है तो उसका इल्जाम कृष्ण पर देते हैं, कृष्ण क्यों किया, समझे? तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि भला और बुरा जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही कार्य के अनुसार हो, मेरे ही कर्म के अनुसार. भगवान को इल्जाम मत देना. ओके साल, ओके लास्ट क्वेश्चन.
जब माला लेके बैठते हैं तो जब बैठ के सिमरन करते हैं तो बहुत एकदम मन बहुत चलायमान रहता है, चंचलता बहुत आती है, और घर के कामों में ध्यान अटका रहता है. और वही जब खाना बनाते समय, जब कोई काम करते समय सिमरन करते हैं तो उस समय अच्छा से होता है. तो कौन सा सिमरन?
तो काम करते करते सिमरन करो. ठीक है, जो भावना अनुकूल रूप से होता है वैसे ही करो, जो कुछ अनुकूल रूप से होता है, जो सरल रूप से होते हैं ऐसे करो. लेकिन 16 माला जप लेना. हरे कृष्ण.